एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार ज्ञान गोष्ठी में, आज हम 20वीं सदी के एक ऐसे फ्रांसीसी लेखक की दुनिया में जा रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ मतलब कालजयी साहित्य रचा, बल्कि हमें अपने मन को, अपनी यादों को और गुजरते वक्त को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। मार्सेल प्रूस्ट।
जी हाँ, प्रूस्ट वो महज एक उपन्यासकार नहीं थे, वो तो एक तरह से हमारी चेतना के नक्शानवीस थे कह सकते हैं। हमारे पास उनकी जिंदगी और उनके काम पर कुछ बहुत अच्छी, बहुत गहरी जीवनियां हैं, जिनसे आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रूस्ट का जादू आखिर था क्या।
तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है वो इसी पर है कि भाई प्रूस्ट कौन थे, उनके वो कौन से बड़े विचार थे जिन्होंने साहित्य पर, सोच पर इतनी गहरी छाप छोड़ी, और उनकी बातें आज भी हमारे लिए क्यों मायने रखती हैं।
और देखिए, शुरुआत में ही ये साफ कर देना जरूरी है कि प्रूस्ट की सबसे बड़ी देन शायद ये थी कि उन्होंने हमारा ध्यान बाहरी घटनाओं के रेलपेल से हटाकर हमारे अंदरूनी संसार की तरफ मोड़ा।
अंदरूनी संसार?
हाँ, खासतौर पर उस चीज पर जिसे वो अनैच्छिक स्मृति कहते थे, इनवॉलंटरी मेमोरी। ये वो यादें हैं जो बिन बुलाए मेहमान की तरह आती हैं, किसी स्वाद से, किसी खुशबू से अचानक जिंदा हो उठती हैं और हमें अतीत के किसी पल में पूरी शिद्दत से वापस ले जाती हैं। यही उनके काम का मर्म है एक तरह से।
तो चलिए उस जमाने से शुरू करते हैं जिसमें प्रूस्ट ने आंखें खोली। उनका जन्म हुआ 1871 में पेरिस के पास। ये वो दौर था जब फ्रांस एक बड़ी लड़ाई, फ्रेंको प्रूशर युद्ध, वो हार चुका था और पेरिस कम्यून की उथल पुथल से गुजरा था। तीसरा गणराज्य बन रहा था और जिसे बेल एपोक कहते हैं, बेल एपोक, सुंदर युग, वो अपनी रौनक बिखेर रहा था। बड़ा दिलचस्प दौर लगता है ये तो।
बिल्कुल, और बड़े विरोधाभासों का दौर था। एक तरफ पुरानी दुनिया जैसे ढह रही थी और दूसरी तरफ कला, विज्ञान, तकनीक सब में जबरदस्त नए प्रयोग हो रहे थे। पेरिस तो जैसे दुनिया का कल्चरल सेंटर बन गया था।
हाँ,
साहित्य में प्रतीकवाद का असर था, सिंबलिज्म का, पेंटिंग में इम्प्रेशनिज्म नए रंग भर रहा था, और टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी तो क्रांति आ रही थी। टेलीग्राफ था, फिर शुरुआती कारें, हवाई जहाज, ये सब दिखने लगे थे। प्रूस ने ये सब बदलाव अपनी आंखों से देखे।
और जाहिर है इन सब बदलावों का असर लोगों की सोच पर भी पड़ रहा होगा।
यकीनन, उस वक्त के एक बड़े दार्शनिक थे हेनरी बर्गसॉन, प्रूस ने उनसे पढ़ाई भी की थी। बर्गसॉन समय को मतलब घड़ी की टिक-टिक की तरह नहीं देखते थे, बल्कि चेतना के एक निरंतर प्रवाह, लद्यूरे की तरह देखते थे। इसका प्रूस पर बहुत गहरा असर हुआ।
अच्छा।
हाँ, और साथ ही एक कला समीक्षक थे जॉन रस्किन, उनके विचारों ने भी उन्हें प्रभावित किया। रस्किन कला को सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि एक नैतिक और आध्यात्मिक खोज मानते थे। प्रूस्ट ने रस्किन की किताबों का अनुवाद भी किया था।
और इसी दौर में वो एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक भूचाल भी आया था ना, ड्रेफस कांड।
हाँ हाँ, ड्रेफस कांड वो एक ऐसा मामला था जिसने पूरे फ्रांसीसी समाज को जैसे बांट दिया था। एक यहूदी फौजी अफसर पर झूठा देशद्रोह का इल्जाम लगा और समाज में जो छुपी हुई एंटी सेमिटिज्म की नाइंसाफी थी वो सब खुलकर सामने आ गई। प्रूस्ट खुद ड्रेफस के पक्के समर्थक थे, जबकि उनके अपने सोशल सर्कल के कई लोग खिलाफ थे, तो ये अनुभव उनके लिए आंखें खोलने वाला था। उन्होंने देखा कि समाज का ऊंचा तबका, वो एरिस्टोक्रेसी जिसके बीच वो उठते बैठते थे, फोबुर्ग सैन जर्मा वाला इलाका, वो भी कैसे पूर्वाग्रहों और खोखलेपन का शिकार था, और ये कड़वा सच उनके लेखन में बार बार उभर कर आता है।
अच्छा, ये तो हुई उनके जमाने की बात। अब जरा उनकी निजी जिंदगी के बारे में जानते हैं, उनका परिवार कैसा था, मतलब बैकग्राउंड।
उनकी जड़ें भी काफी मिलीजुली थीं। पिता डॉक्टर एड्रियन प्रूस्ट एक माने हुए डॉक्टर थे, महामारी विशेषज्ञ थे, कैथोलिक थे और बिल्कुल वैज्ञानिक सोच वाले इंसान।
ओके।
और माँ जीन वेल एक पढ़े लिखे अमीर यहूदी परिवार से थीं। उन्हें साहित्य और कला से गहरा लगाव था, तो प्रूस्ट को विरासत में वो वैज्ञानिक तर्क भी मिला और कलात्मक संवेदनशीलता भी,
दोनों का मिक्स।
हाँ बिल्कुल। घर का माहौल काफी पढ़ा लिखा और खाते पीते मध्यवर्गीय था। माँ का उन पर बहुत असर रहा। बचपन में उन्होंने ही प्रूस्ट को साहित्य की दुनिया से मिलवाया।
और ये भी सुना है कि 9 साल की उम्र में उन्हें अस्थमा का पहला अटैक आया था जो जिंदगी भर उनके साथ रहा। इसका क्या असर पड़ा उनकी जिंदगी पर?
हाँ, ये बहुत अहम बात है। इस बीमारी ने उन्हें शारीरिक रूप से काफी कमजोर कर दिया और दुनिया की भाग दौड़ से काफी हद तक काट दिया। लेकिन शायद इसी एकांत ने उनकी अंदरूनी दुनिया को और ज्यादा गहरा और सेंसिटिव बना दिया। वो घंटों बिस्तर पर लेटे हुए सोचते रहते, चीजों को बहुत बारीकी से महसूस करते हैं। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने बेडरूम की दीवारों पर कॉर्क लगवा लिया था ताकि बाहर का शोर और धूल अंदर ना आ सके। वो कमरा ही जैसे उनकी पूरी दुनिया बन गई थी।
अरे हाँ, वो कॉर्क वाले कमरे की बात मैंने भी पढ़ी है, और ये सच है कि वो रात भर जाग कर लिखते थे।
हाँ बिल्कुल, उनकी जिंदगी का पहिया जैसे उल्टा घूमता था। वो रात भर लिखते थे ढेर सारी कॉफी के सहारे, और दिन में सोते थे।
अजीब रूटीन था।
हाँ, लेकिन शायद यही एकांत, ये बीमारी, ये रात का सन्नाटा, शायद इन सब ने मिलके उन्हें वो असाधारण ऑब्जर्वेशन की पावर दी और यादों की गहराई में उतरने की कुव्वत दी। उनकी पढ़ाई लिखाई वैसे अच्छे स्कूलों में हुई, लिसी कॉन्डरसेट में, और फिर यूनिवर्सिटी में भी, सोरबोन में। वहां उनकी मुलाकात कई ऐसे लोगों से हुई जो बाद में फ्रांस के बड़े लेखक और विचारक बने।
तो चलिए अब उनके सबसे चर्चित विचार पर आते हैं, स्मृति यानी याददाश्त। ऐसा लगता है यही उनके पूरे लेखन की धुरी है।
सही कहा। यहां आकर्षक बात यह है कि प्रूस ने यादों को दो हिस्सों में बांटा। एक, वो यादें जिन्हें हम सोच समझकर, मतलब जोर लगा के याद करने की कोशिश करते हैं, जैसे किसी का नाम या कोई तारीख। प्रूस मानते थे कि ये स्वैच्छिक स्मृति, वॉलंटरी मेमोरी, अक्सर सूखी और बेजान होती है। इसमें अतीत की असली रूह नहीं होती।
अच्छा, और दूसरी तरह की याद?
दूसरी है अनैच्छिक स्मृति, इनवॉलंटरी मेमोरी, जो उनके लिए कहीं ज्यादा कीमती थी। ये वो याद है जो बिना हमारी मर्जी के अचानक किसी सेंसरी एक्सपीरियंस से, कोई स्वाद, कोई खुशबू, कोई आवाज जिंदा हो उठती है।
हाँ,
और जब ये होता है तो अतीत का वो पूरा लम्हा अपनी सारी भावनाओं और माहौल के साथ हमारे सामने आ खड़ा होता है। ये बिजली की कौंध की तरह होती है जो वक्त की धुंध को चीर देती है।
जैसे वो चाय में डूबे मैडलिन कुकीज वाला मशहूर किस्सा, वो तो बहुत फेमस है।
बिल्कुल, उनके महान उपन्यास खोए हुए समय की खोज में की शुरुआत में ही आता है। कथावाचक सालों बाद एक दिन चाय में मैडलिन कुकी डुबोकर खाता है, और अचानक बिना किसी कोशिश के उसे अपने बचपन के गांव कॉम्ब्रे की भूली बिसरी दुनिया याद आ जाती है। घर, गलियां, लोग, सब कुछ।
वाह,
प्रूस्ट के लिए यही अनैच्छिक यादें थीं जो हमें वक्त के बंधन से आजाद करती थीं, और गुजरे हुए लम्हों का असली सार, उनकी खुशबू हम तक पहुंचाती थीं। ये महज याद करना नहीं था, बल्कि अतीत को दोबारा जीना था, और इसी में अनुभव का छुपा हुआ सच छिपा था उनके मुताबिक।
और इसी से जुड़ा है उनका समय का नजरिया भी, जो बड़ा अनोखा था कह सकते हैं।
हाँ, उन्होंने समय को सीधी सपाट रेखा की तरह नहीं देखा। उनके लिए समय हमारी चेतना जैसा था, कई परतों वाला, मल्टीलेयर्ड, जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य एक दूसरे में गुंथे हुए हैं, खासकर उन अनैच्छिक स्मृति के पलों में। अतीत जैसे वर्तमान में जिंदा हो उठता है। उनका पूरा उपन्यास ही वक्त की इसी पेचीदा मनोवैज्ञानिक बनावट को पकड़ने की एक लंबी, बहुत लंबी कोशिश है।
अच्छा, लोगों के स्वभाव यानी पर्सनालिटी के बारे में वो क्या सोचते थे? क्या वो मानते थे कि हम जैसे हैं वैसे ही रहते, स्टेबल?
नहीं, उनका मानना था कि इंसान की शख्सियत कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि बहते पानी की तरह है, तरल है, जिसमें कई रंग होते हैं, कई विरोधाभास होते हैं। उनके पात्र वक्त के साथ बदलते हैं, उनके नए नए पहलू सामने आते हैं।
हाँ,
वो ये भी मानते थे कि हम किसी दूसरे इंसान को कभी पूरी तरह नहीं जान सकते, क्योंकि हम हमेशा उसे अपनी इच्छाओं, अपनी जरूरतों और अपने पूर्वाग्रहों के चश्मे से ही देखते हैं।
और प्यार, उनके उपन्यासों में प्यार का जिक्र तो बहुत है, लेकिन वो तस्वीर कुछ उदास सी लगती है, थोड़ी निराशाजनक।
हाँ, उनका नजरिया कुछ ऐसा ही पेचीदा था। प्रूस्ट के लिए प्यार मतलब दो रूहों का मिलन कम और हमारी अपनी कल्पना का खेल ज्यादा था।
अपनी कल्पना का खेल?
हाँ, हम जिसे चाहते हैं असल में हम उस पर अपनी ख्वाहिशों का अक्स देखते हैं, उसे वैसा बना लेते हैं जैसा हम देखना चाहते हैं। और क्योंकि असलियत हमारी कल्पना से कभी मेल नहीं खाती, इसलिए प्यार में जलन, शक और आखिर में मोहभंग होना वो लगभग तय है। उनके उपन्यासों में चार्ल्स स्वान का ऑडिट के लिए जुनून देखिए, या कथावाचक का अल्बर्टीन के लिए तड़पता हुआ प्यार, ये सब इसी दर्दनाक सच्चाई को दिखाते हैं।
और उन्होंने समलैंगिकता जैसे उस वक्त के मुश्किल समझे जाने वाले विषय को भी अपने लेखन में जगह दी। ये काफी बोल रहा होगा उस जमाने में।
ये उनकी हिम्मत थी, बिल्कुल। हालांकि सामाजिक दबाव के चलते उन्हें काफी कुछ इशारों में सांकेतिक रूप से लिखना पड़ा, लेकिन बैरन डे चार्ल्स जैसे जटिल और यादगार किरदारों के जरिए उन्होंने इच्छा, पहचान, सामाजिक दिखावा और समलैंगिकता से जुड़े सवालों को बड़ी गहराई से छुआ। माना जाता है कि उनके उपन्यास में अल्बर्टीन का जो स्त्री पात्र है उसकी प्रेरणा कुछ हद तक उनके अपने ड्राइवर और करीबी साथी एल्फ्रेड एगोस्टिनेली से मिली थी, जिनके प्रति प्रूस्ट गहरा लगाव महसूस करते थे, तो उन्होंने अपने निजी अनुभवों को कला में ढाल दिया था।
और उनका ये विचार भी बड़ा दिलचस्प है कि हमारे अंदर दो तरह के स्व या दो मैं होते हैं, इसका क्या मतलब है?
ये विचार उनके एक अहम सैद्धांतिक लेख अगेंस्ट सेंट ब्यूव से आता है। सेंट ब्यूव एक मशहूर आलोचक थे जो मानते थे कि किसी लेखक के काम को समझने के लिए उसकी जिंदगी को जानना जरूरी है। प्रूस ने इसका जोरदार खंडन किया।
अच्छा, क्यों?
उन्होंने कहा कि एक हमारा सामाजिक मैं होता है, सोशल सेल्फ, जो रोजमर्रा की जिंदगी जीता है, लोगों से मिलता जुलता है, लेकिन एक दूसरा कहीं ज्यादा गहरा कलात्मक मैं, आर्टिस्टिक सेल्फ होता है, जो दुनिया को एक अलग नजर से देखता है, और सच्ची कला उसी गहरे मैं से जन्म लेती है। इसलिए लेखक की बाहरी जिंदगी के किस्सों से उसके काम का असली मतलब नहीं समझा जा सकता, वो दोनों अलग हैं।
तो क्या दुख का कला से कोई रिश्ता है? मतलब क्या दुख जरूरी है कला के लिए?
प्रूस्ट का मानना था कि हाँ, गहरा रिश्ता है। उन्होंने लिखा भी, खुशी शरीर के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन ये दुख है जो मन की शक्तियों को जगाता है। उनके लिए पीड़ा, चाहे वो प्यार में मिले धोखे से हो, बीमारी से हो या किसी और वजह से, वो हमें अपनी अंदरूनी दुनिया को खंगालने पर मजबूर करती है, और अक्सर वही गहरी समझ और कलात्मक प्रेरणा का स्रोत बनती है।
चलिए अब उनके काम पर आते हैं। मतलब खोए हुए समय की खोज में से पहले भी उन्होंने कुछ लिखा था?
हाँ हाँ, बिल्कुल। उनकी पहली किताब 1896 में आई थी, ले प्लेजियर ए ले जोर, मतलब सुख और दिन। इसमें कहानियां, स्केचेस और कविताएं थी। इसमें भी वो विषय दिखते हैं जैसे जलन, सामाजिक महत्वाकांक्षा, यादें, जो बाद में उनके बड़े काम में और खुलकर सामने आए।
लेकिन उसे ज्यादा पहचान नहीं मिली शायद।
हाँ, तब आलोचकों ने उसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। फिर उन्होंने एक अधूरा उपन्यास जॉन सेंटुल पर भी सालों काम किया। उनके लिए एक तरह की प्रयोगशाला बना, जहां उन्होंने अपनी तकनीकें और थीम विकसित की।
और फिर आया उनका वो शाहकार जिसने साहित्य का इतिहास बदल दिया, अला रशेश ड्यूतों पेरद्यू, खोए हुए समय की खोज में। 7 जिल्दों में फैला ये महा उपन्यास, ये तो मतलब बुत बड़ा काम है।
सही मायने में एक महाकाव्य। ये 1913 से 1927 के बीच छपा। आखिरी 3 हिस्से तो उनकी मौत के बाद आए। इस पूरे उपन्यास को एक यात्रा की तरह देखा जा सकता है।
यात्रा? कैसी यात्रा?
देखिए, शुरुआत होती है स्वॉन्स वे से, द कोते द शे स्वॉन। इसमें वो मेडलिन कोकी वाला पल आता है जो कथावाचक को बचपन की यादों में ले जाता है, और चार्ल्स स्वॉन के जुनूनी प्यार की कहानी है। और दिलचस्प बात यह है कि इस पहले हिस्से को कई बड़े प्रकाशकों ने छापने से मना कर दिया था।
सच में?
हाँ, जिसमें आंद्रे गेट जैसे बड़े लेखक की सलाह पर गलीमार्ड पब्लिशर भी शामिल था। प्रूस्ट को इसे अपने पैसे से छपवाना पड़ा।
कमाल है।
फिर सफर आगे बढ़ता है। कथावाचक जवानी की दहलीज पर कदम रखता है, प्यार और समाज को समझने की कोशिश करता है। वो है फूलों की छांव में, अ लॉम्ब्र दे जॉन फियन ऑफ फ्लोर। इसी हिस्से के लिए उन्हें फ्रांस का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार प्रिक्स गूनकोर्ट मिला। हालांकि इस पर भी काफी विवाद हुआ था। लोग कह रहे थे कि एक अमीर अधेड़ लेखक को ये क्यों दिया गया।
अच्छा, कंट्रोवर्सी भी हुई।
हाँ, फिर आगे वो अभिजात वर्ग की खोखली दुनिया में जाते हैं, गर्मांत का रास्ता, फिर इंसानी रिश्तों की जटिलताओं, खासकर प्यार और जलन के भंवर में गहरे उतरते हैं, सदोम और गोमुरा, बंदी, भगोड़ी, और अंत में पाया हुआ समय, लेतों रत्रुवे। उसमें कथावाचक को ये रहस्य समझ आता है कि गुजरा हुआ वक्त पूरी तरह खोता नहीं है, उसे अनैच्छिक स्मृतियों के जरिए पकड़ा जा सकता है, और कला ही वो जादू है जो इन बिखरे हुए पलों को जोड़कर उन्हें हमेशा के लिए जिंदा रख सकती है। यही उसके जीवन का मकसद बनता है।
तो ये उपन्यास महज एक कहानी नहीं है, ये तो समय, स्मृति, कला और जिंदगी के मतलब की एक महाखोज है। मुख्य विषय वही है, यादें, गुजरता वक्त, हमारी चेतना, प्यार, जलन, समाज का दोगलापन, और आखिर में कला कैसे हमें मुक्ति दिला सकती है।
बिल्कुल, ये सब मिलकर एक ऐसा घना और बहुस्तरीय संसार रचते हैं जो पाठक को अपने अंदर खींच लेता है। ये आसान रीडिंग नहीं है, लेकिन बहुत रिवॉर्डिंग है।
उस दौर के दूसरे बड़े लेखकों जैसे जेम्स जॉयस या वर्जीनिया वुल्फ, उनके मुकाबले प्रूस्ट कहाँ खड़े होते हैं? कुछ समानताएं थीं या बिल्कुल अलग थे?
वो निश्चित रूप से जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, थॉमस मान जैसे यूरोपीय आधुनिकतावादी लेखकों की कतार में आते हैं। वो सब इंसानी चेतना की गहराइयों को खंगाल रहे थे, ये कॉमन था। लेकिन प्रूस्ट का अंदाज बहुत खास था। उसमें एक फ्रांसीसी नफासत थी, सामाजिक बारीकियों और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर बहुत जोर था।
हाँ।
जहां वुल्फ चेतना के तात्कालिक प्रवाह को, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को पकड़ने की कोशिश करती हैं, वहीं प्रूस्ट ज्यादातर यादों की परतों को उघाड़ते हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे अतीत पल पल वर्तमान को सींचता रहता है, उसे बनाता रहता है। वो कनेक्शन दिखाते हैं।
तो प्रूस्ट की विरासत क्या है, मतलब उनका असर कितना गहरा और कितना स्थायी रहा, आज भी लोग उन्हें पढ़ते हैं?
उनका असर जबरदस्त रहा है। उन्हें साहित्यिक आधुनिकतावाद के सबसे बड़े नामों में गिना जाता है। उनके बाद आने वाले लगभग हर बड़े लेखक ने, चाहे वो फॉकनर हों, बेकेट हों या बाद के दौर के लेखक, किसी न किसी तरह उनसे जरूर प्रभावित हुए हैं। फ्रांस में भी न्यूवो रोमन, नया उपन्यास आंदोलन और आज का जो ऑटोफिक्शन है, आत्मकथात्मक उपन्यास, उस पर उनका असर साफ देखा जा सकता है।
और साहित्य के बाहर भी उनका कुछ प्रभाव रहा?
हाँ बिल्कुल, वॉल्टर बेंजामिन से लेकर जूलिया क्रिस्टेवा तक कई दार्शनिकों और विचारकों ने उनके काम से प्रेरणा ली है। और प्रूस्टियन शब्द तो अब आम बोलचाल का हिस्सा बन गया है ना?
हाँ, प्रूस्टियन मूवमेंट कहते हैं।
बिल्कुल, जब भी हम किसी अचानक आई याद या बहुत बारीक मनोवैज्ञानिक एहसास की बात करते हैं तो अक्सर ये शब्द इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि आज का जो न्यूरोसाइंस है, तंत्रिका विज्ञान, वो भी याददाश्त के बारे में प्रूस्ट की कुछ सहज समझ की पुष्टि करता दिखता है। ये बड़ी दिलचस्प बात है।
वाकई, चलिए उनके कुछ ऐसे कथन सुनते हैं जो उनके विचारों की कुंजी जैसे हैं, कुछ कोट्स।
एक बहुत मशहूर कथन है, खोज की असली यात्रा नए परिदृश्य को खोजने में नहीं बल्कि नई आंखें पाने में है। लाप्रेजिनियर से
नई आंखें पाना,
हाँ, ये बताता है कि असली बदलाव बाहर नहीं, हमारे देखने के नजरिए में आता है, और कला हमें वही नई आंखें देती है।
और दुख और कला के रिश्ते पर भी उन्होंने कुछ कहा था ना?
हाँ, वो जो मैंने पहले बताया था, खुशी शरीर के लिए फायदेमंद है लेकिन ये दुख है जो मन की शक्तियों को विकसित करता है। लिटॉम्स रित्रुबे से, ये उनके इस यकीन को जाहिर करता है कि मुश्किल हालात ही हमें ज्यादा गहराई से सोचने और रचने पर मजबूर करते हैं।
यादों के बारे में भी कोई खास बात? वो मैडलिन वाला हिस्सा तो है ही।
स्वांसवे में वो लिखते हैं, जब मैडलिन कुकी वाला पल आने वाला होता है, उसका बिल्डअप करते हुए वो कहते हैं, जब अतीत से कुछ भी नहीं बचता, लोगों के मरने के बाद, चीजों के टूटने और बिखरने के बाद, सिर्फ गंध और स्वाद, ज्यादा नाजुक लेकिन ज्यादा जिंदा दिल, ज्यादा अमूर्त, ज्यादा टिकाऊ, ज्यादा वफादार रह जाते हैं, आत्माओं की तरह।
वाह।
याद करते हुए, इंतजार करते हुए, उम्मीद करते हुए बाकी सबके खंडरों पर, और अपनी नन्ही सी, लगभग ना महसूस होने वाली बूंद में यादों की उस विशाल इमारत को बिना झुके थामे रहते हैं।
क्या बात है, ये अनैच्छिक स्मृति की ताकत का कितना खूबसूरत बयान है।
बिल्कुल।
तो कुल मिलाकर मार्सेल प्रूस्ट सिर्फ अतीत की यादों में खोए रहने वाले लेखक नहीं थे, वो तो हमें ये सिखा रहे थे कि अपनी यादों को, अपने एहसासों को ध्यान से सुनकर हम अपने आज को और खुद को बेहतर समझ सकते हैं।
बिल्कुल, और शायद यही वो अंतिम विचार है जिस पर हम गौर कर सकते हैं। प्रूस्ट हमें दिखाते हैं कि जिंदगी की सबसे गहरी खोज शायद बाहरी दुनिया की भागदौड़ में नहीं बल्कि अपने अंदर की दुनिया, अपनी यादों के अनदेखे नक्शों को ध्यान से पढ़ने में है। क्या हो अगर हम अपनी उन अनैच्छिक स्मृतियों, वो अचानक कौन जाने वाली खुशबू, वो कोई भूला हुआ स्वाद, वो कोई धुन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें? क्या पता हमें अपने और अपने गुजरे हुए कल के बारे में कुछ ऐसा पता चल जाए जो हमारी आज की नज़र ही बदल दे। ये खुद को खोजने का एक बहुत ही निजी और अनोखा रास्ता हो सकता है ना?
हाँ बिल्कुल, सोचने वाली बात है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।